بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے امریکہ کا اقتصادی بحران اور حکومتی شٹ ڈاؤن کا خاتمہ۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ناظرین، امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن کا بحران سر انجام 16 دن بعد ختم ہو گیا، 1 اکتوبر سے شروع ہونے والا۔ بجٹ سے متعلق ڈیڈ لاک 16 اکتوبر کو اس وقت ختم ہو گیا جب سینٹ کے منظور کردہ عبوری بجٹ بل کو ایوان نمائندگان نے بھی پاس کر دیا اور صدر اوباما نے اس پر دستخط کر دیے۔ واشنگٹن سے موصولہ رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے اسی کے ساتھ ان 8 لاکھ سے زائد سرکاری ملازمین کو کام پر واپس آنے کا نوٹس جاری کر دیا ہے جو 1 اکتوبر سے جبری چھٹی پر بھیج دیے گئے تھے۔ نئے بل میں جنوری 2014 کے وسط تک کے لیے حکومت کے ضروری بجٹ کو منظوری دے دی گئی ہے اور اسی کے ساتھ حکومت کو 7 فروری 2014 تک مزید قرض لینے کا مجاز قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال وائٹ ہاؤس کے بقول امریکہ میں دردناک سیاسی ڈرامہ ختم ہو گیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم امریکہ میں حکومت کو بچانے کے لیے عارضی بل کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ 1 اکتوبر سے شروع ہونے والے اس سیاسی ڈرامے سے حاصل کیا ہوا جس کو وائٹ ہاؤس نے دردناک قرار دیا ہے۔ 15 دن کے حکومتی شٹ ڈاؤن کا نتیجہ کیا نکلا اور 2014 کے پہلے مہینے کے وسط تک کے لیے امریکی حکومت کو جو راحت پہنچائی گئی ہے، کیا اس سے حکومت اور امریکی عوام کے سر پر لٹکنے والی نادہندگی کی تلوار بالکل سے ہٹ گئی ہے یا پھر وہی صورتحال واپس آ سکتی ہے؟ اور اسی کے ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ 1 اکتوبر سے 16 اکتوبر تک جاری رہنے والے دردناک سیاسی ڈرامے میں نقصان کس کو پہنچا اور فائدہ کس نے اٹھایا۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے دہلی اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار سورب کمار شاہی کو، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں حصہ لیں گے پاکستان کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار ڈاکٹر قندیل عباس، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کی بحث میں شامل کیا جائے گا لندن میں مقیم بر صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر علی جعفر زیدی کو۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
امریکی سینٹ اور ایوان نمائندگان میں مالیاتی تعطل اور شٹ ڈاؤن کے خاتمے کے لیے منظور ہونے والے بل پر امریکی صدر باراک اوباما نے دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد امریکہ میں اقتصادی بحران کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ امریکہ میں مالیاتی بل پر حکومت اور اپوزیشن کے تنازع کے باعث 1 اکتوبر سے کئی سرکاری ادارے بندش کا شکار تھے اور 8 لاکھ سے زائد ملازمین کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا تھا۔ قرض کی حد میں اضافے کی ڈیڈ لائن بھی قریب آ رہی تھی، جس کی وجہ سے امریکہ کو نادہندگی کا خطرہ تھا اور امریکہ سمیت دنیا بھر کی معیشت پر بحران کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ 16 دن کی محاذ آرائی کے بعد ریپبلکن اور ڈیموکریٹ مفاہمتی راستہ نکالنے پر آمادہ ہوئے اور شٹ ڈاؤن کے خاتمے اور قرض کی حد میں اضافے کا بل سینٹ اور ایوان نمائندگان سے منظور کر لیا گیا۔ کانگریس کی منظوری کے بعد امریکی صدر باراک اوباما نے بل پر دستخط کر دیے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کو ملک کو آگے لے جانے کے لیے اسی طرح اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اراکین کانگریس کی ترجیح سیاست نہیں بلکہ ملک کی مفاد ہونا چاہیے۔ صدر اوباما نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ اس حوالے سے تفصیل سے بات بعد میں کریں گے، مگر انہوں نے کہا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں اور دوبارہ کہوں گا کہ میں کسی کے ساتھ بھی کام کرنے کو تیار ہوں۔ ڈیموکریٹ ہو یا ریپبلکن، ایوان نمائندگان کا رکن ہو یا سینٹ کا رکن، جس کے پاس ہماری معیشت کو ترقی دینے کا، مزید روزگار پیدا کرنے اور متوسط طبقے کو مضبوط کرنے کا کوئی منصوبہ ہو یا آئیڈیالوجی ہو۔ صدر اوباما نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں سمجھا کہ ڈیموکریٹس کے پاس ہی اچھے خیالات کا ٹھیکہ ہے۔ سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت ہے اور وہاں یہ قانون 18 کے مقابلے 81 ووٹوں سے منظور ہوا۔ ایوان نمائندگان میں اس بل کو 144 کے مقابلے میں 285 ووٹ ملے۔ یہ قانون 167 خرب ڈالر کی حد بڑھانے کے لیے دی گئی مہلت سے چند گھنٹے پہلے منظور ہوا۔ منظور شدہ قانون کے تحت وفاق کی قرض لینے کی حد 7 فروری تک اور حکومت کا خرچ چلانے کی مہلت 15 جنوری تک بڑھا دی گئی ہے۔ اس قانون کے تحت سینٹ اور ایوان نمائندگان کا ایک پینل بنایا جائے گا جو طویل مدت بجٹ بنانے پر کام کرے گا۔ امریکی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے میں ریپبلکن پارٹی کو شکست ہوئی ہے، جو امریکی صدر باراک اوباما پر دباؤ ڈال کر کچھ مطالبات پورے کروانا چاہتی تھی۔ ریپبلکن پارٹی امریکی صدر پر دباؤ ڈال کر اپنے مطالبات بھی پورے نہیں کروا سکی، جبکہ دوسری جانب عوامی سطح پر اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق لوگوں کی اکثریت اس بحران کا ذمہ دار ریپبلکن پارٹی کو ٹھہراتی ہے۔ ایوان نمائندگان کے اسپیکر جان بونر نے، جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے، ایک امریکی ریڈیو اسٹیشن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جنگ تو خوب لڑی، بس جیت نہیں سکے۔ امریکہ میں صورتحال کے وجود میں آنے کے سلسلے میں اسرائیل نواز لابی کو بھی ذمہ دار مانا جاتا ہے، جو امریکی انتظامیہ کی ایران اور مشرق وسطی سے متعلق پالیسیوں میں نظر آنے والی تبدیلی سے قطعی خوش نہیں ہے۔
جی ہاں ناظرین، امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن کے خاتمے سے متعلق ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار سورب کمار شاہی صاحب موجود ہیں۔ شاہی صاحب السلام علیکم۔ امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن ختم کرنے کے لیے جو بل پاس کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیں، ایک طریقے سے یہ جو بل پاس ہوئی ہے، یہ میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہو گئی ہے۔ اب جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں سویپنگ انڈر دا کارپیٹ، یعنی ایک چیز جس کا ہونا اب لگ بھگ طے ہے، اس کو آپ 2-3 مہینے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں، اس میں اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز کے بجٹ کو دیکھیں تو اسے 15 جنوری تک بڑھایا گیا ہے، اور جو ڈیٹ لیمٹ جسے ہم کہتے ہیں فسکل ڈیٹ لیمٹ کہتے ہیں، وہ جو ہے 7 فروری تک اس میں بڑھائی گئی ہے۔ لیکن اگر اس میں شارٹ ٹرم اس کو ہم انالائز کریں کہ اس میں کسے فائدہ اور کسے نقصان ہوا، تو آپ یہ پائیں گے کہ اتنی لمبی یعنی 15-16 دن چلنے والے اس بیٹل میں جو نقصان وہ دکھ رہا ہے، وہ کمپلیٹلی ریپبلکن پارٹی کا دکھ رہا ہے۔ اب آپ پہلے دن کے سٹینڈ کو دیکھیں، پریزیڈنٹ اوباما نے یہ کہا کہ میں اپنے اوباما کیئر بل پہ، میں اس پہ کوئی بھی امینڈمنٹ لانے کو تیار نہیں ہوں یا کوئی بھی کنسیڈریشن سننے کو تیار نہیں ہوں۔ اس پہ ریپبلکنز نے کہا کہ ہم اسے پاس نہیں ہونے دیں گے۔ 4 دنوں کے بعد انہوں نے اپنا گراؤنڈ شیڈ کیا، ریپبلکنز نے بولے کہ جی ہم اسے پاس ہونے تو دیں گے، لیکن 1 سال بعد پاس ہونے دیں گے، 1 سال اس کو ڈیفر کر دیں۔ اوباما نے کہا جی نہیں، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ پھر وہ 4 دنوں کے بعد ریپبلکنز نے کہا کہ جی ہم ابھی پاس کر دیتے ہیں، لیکن اس کے سارے حصوں کو پاس نہیں کریں گے، اس کے کچھ حصوں کو پاس کریں گے۔ اوباما نے کہا جی نہیں، ہم ابھی پاس کرائیں گے اور سارے حصوں کو پاس کرائیں گے، ورنہ نہیں کرائیں گے۔ تو انہوں نے پھر اس کے بعد، اب جو کل آپ دیکھیں جو ایک بلو ڈاؤن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہوا ہے، اور انہوں نے اس کو پاس کر دیا ہے۔ تو اب اس میں دو طرف سے مار جو ہے ریپبلکنز کو پڑی ہے۔ سب سے بڑی مار یہ پڑی کہ جو اوپینین پولز ہیں ریپبلکن پارٹی کی ہسٹری میں، یعنی آپ کہہ لیں کہ امریکن جو ریپبلکن پارٹی کی ہسٹری ہے، وہی امریکن پولیٹیکل ہسٹری بھی، کیونکہ گرینڈ اولڈ پارٹی کہی جاتی ہے وہاں کی، امریکن پولیٹیکل ہسٹری میں ریپبلکن پارٹی کو اتنی کم ریٹنگ، یعنی پرسوں کی ریٹنگ 21% تھی، اتنی کم ریٹنگ ہسٹوریکلی کبھی اچیو نہیں ہوئی۔ تو یعنی ایک بہت بڑا نقصان جو ہے ان کو عوام کے بیچ میں جو ہے انہیں ملی۔ اب دوسری چیز دیکھیں کہ دوسری طرف براک اوباما کے جو سٹینڈ تھا، اس کو بھی سٹینڈ سے ہٹا نہیں پائے۔ تو یعنی एक तो पॉलिटिकली अचीव ये कुछ नहीं कर पाए, दूसरा वोटर बेस को भी इन्होंने लूज किया, और तीसरी सबसे बड़ी बात जो कि जिसकी बात लोग अभी नहीं कर रहे वो ये कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो अब एक टसल चालू हुआ है, यानी एक टी पार्टी जो ग्रुप है जो बिल्कुल अल्ट्रा अल्ट्रा राइट विंग ग्रुप है, और एक जो थोड़े प्रेगमेटिक रिपब्लिकन है, यानी तो वो उनकी जो टसल्स यानी टेड क्रूज और बोहर जैसे जो लोग हैं उनकी टसल जो बाकी लोगों से चल रही है ये पार्टी को और भी नुकसान पहुंचाएगी। तो मुझे ये लगता है कि कंप्लीट एक ह्यूमिलिएशन इसे कह सकते हैं और एक पॉलिटिकल लॉस जो है या रिपब्लिकन पार्टी का देखा जाएगा, और बराक ओबामा ने पॉलिटिकल कैपिटल गेन किया है। अब इस कैपिटल को आगे वो किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इस कैपिटल को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर कम से कम 3 महीने के लिए तो ये बिल्कुल तय हो गई कि एक बहुत बड़ी जीत जो है वो प्रेसिडेंट ने अचीव की है रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर, और सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर नहीं एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पूरी कांग्रेस के ऊपर।
बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो में जी, इस्लामाबाद स्टूडियो थोड़ी देर में चलेंगे। शाही साहब, जनाब तकरीबन सारे तज़िया निगारों का यही कहना है कि ये जो लड़ाई 15-16 दिन तक रही है इसमें डेमोक्रेट पार्टी को फतह हासिल हुई है और रिपब्लिकन को शिकस्त हुई है। खुद रिपब्लिकन्स ने भी अपनी शिकस्त कबूल की है, जो ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर हैं बोइनर साहब, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने कहा कि भाई देखिए लड़ाई तो हमने अच्छी लड़ी, अलबत्ता यह है कि हम इस लड़ाई को जीत नहीं पाए। तो उनके जीत न पाने के असबाब क्या है?
अभी देखें बहुत चीज़ें जो है वो निकल के अभी सामने आएंगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं कल नोटिस कर रहा था जिसे लोग अभी नहीं उतना एनालाइज कर पा रहे हैं, वो ये कि ओबामा केयर जो एक बिल था वो कभी भी उसमें देखें 50-50 उसकी पॉपुलैरिटी हमेशा से रही है। एक बड़ा तबका जो लोअर मिडिल क्लास का और लोअर क्लास का था उसको सपोर्ट करता रहा है, लेकिन जो अपर मिडिल क्लास अपर क्लास तबका है वो उसकी ब्रेन वॉश ऐसे हो रखी है पिछले 40-50 सालों से कि वो इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट को एक सोशलिस्ट प्रोजेक्ट एक कम्युनिस्ट प्रोजेक्ट के रूप में देखता है, तो वो काफी उसका जो है मुखालिफत उन्होंने की थी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो नजर आया वो ये कि पिछले ये 16 दिनों में ओबामा केयर बिल, चूंकि ये एक समझ लें कि डिबेट के बीच में रहा, तो लोग इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, लोगों ने जानना शुरू कर दिया
जी।
जानने के बाद पढ़ने के बाद वो अब जो इसके लिए सपोर्ट जो है वो सडनली 41% से इंक्रीज होकर 48-49, इनफैक्ट कल किसी पोल ने 51% भी कहा है कि सपोर्ट बेस जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो अब देखें ये बहुत बड़ी डिफीट है रिपब्लिकन पार्टी की, क्योंकि ये उनकी कोर आइडियोलॉजी है। इस चीज को समझें कि यानी कांग्रेस में हार और जीत जो है वो लोग 3 महीने के बाद भूल सकते हैं, लेकिन आपकी कोर आइडियोलॉजी क्या है कि हम अमेरिका में इस तरह का कोई भी सोशलिस्ट रिलेटेड प्रोग्राम जो है वो हम नहीं आने देंगे। लेकिन वो सोशलिस्ट रिलेटेड प्रोग्राम जो है वो भी उसको जब लोगों ने अपने तरीके से परखा तो पाया कि वो अच्छा है। यानी आपने पिछले 15 दिनों में अपना 8% कोर वोट बैंक, जिसको कोर बेस यानी बिल्कुल अल्ट्रा राइट विंग कंजर्वेटिव वोटर बेस जो कहते हैं, वो आपने लूज कर दिया, वो आपने खो दिया। तो ये इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो कह रहे हैं, यानी अब अगले साल या आने वाले इलेक्शंस में जो इसके इफेक्ट पड़ेगा जो होंगे वो बहुत ज्यादा आप कहने वाइड स्प्रेड होंगे, और तब जाके आपको अंदाजा लगेगा कि एक मैसिव टेक्टोनिक शिफ्ट जो वोटर बेस में हुई है ये तब रिपब्लिकन्स को ये अंदाजा हुआ कि उन्होंने एक बहुत गलत चाल चली और वो उनको महंगी पड़ गई
जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमारा टेलीफोन लाइन के ज़रिए राबिता बरकरार हुआ है लंदन से डॉक्टर अली जाफर जैदी के साथ। जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
जैदी साहब, अमेरिका में जो हुकूमत को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए जो अबूरी बजट बिल मंजूर किया गया है उस पर आपका तबसरा क्या है?
जी, ये अबूरी बिल से हुकूमत का चेहरा तो बच गया, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है और ये मुस्तकिल हल हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि असल मसला डेफिसिट्स और स्पेंडिंग का है
जी।
और रिपब्लिकन जो हैं वो ओबामा के हेल्थ जो केयर प्रोग्राम है उसको थ्रू नहीं होने देना चाह रहे, लेकिन ओबामा उस पे डटे रहे और फाइनली खैर ये थ्रू हो गया, लेकिन ये क्राइसिस रहेगा
जी,
क्योंकि असल बात यह है कि अमेरिका के पास पैसा ऐसा है नहीं, इट्स अ बैंकरप्ट कंट्री, और सबसे ज्यादा जो इस वक्त परेशान मुल्क था वो चाइना था, क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो चाइना की जो बॉन्ड्स हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उस पर चल रही है, जो अमेरिका की अपनी इकोनॉमी है वो तो इट्स अ बैंकरप्ट कंट्री इन रियल सेंस, तो इकोनॉमी उनकी कई बार फेल हो चुकी, फाइनेंशियल क्राइसिस कई बार आ चुके, तो वो मुल्क जो दुनिया पर कर्जे लेकर जंगे मुसल्लत करता हो तो वो इकोनॉमी कब तक सस्टेन करेगी? $3 trillion लेकर इन्होंने इराक पर जंग मुसल्लत की
जी।
उसके बाद ये अफगानिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर महीने इनका खर्च हो रहा है, और ये सब कर्जों पर हैं जो जंगें हो रही हैं, और सऊदी अरब के साथ मिलकर इन्होंने जो शाम के खिलाफ एक तमाशा खड़ा किया है वहां पर भी इनकी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, हालांकि कतर और सऊदी अरब भी बहुत मदद कर रहे हैं इनकी इस मामले में, लेकिन वहां का जो असल सफर करने वाला है वो अमरीका का आम आदमी है, कि जितना भी कर्जा उठाते हैं, जितना भी क्राइसिस बिल्ट होता है उसको असल में तो फिर वहाँ का जो आम आदमी है वो पे करता है, वहाँ का टैक्स पेयर उसको पे करना पड़ता है, जबकि इन जंगों के जो बेनिफिशरीज हैं वो हैं जो कि असले के सौदागर हैं, और उससे असला बेचने वालों कंपनीज को, यानी आज अमेरिका में सबसे ज्यादा आमदनी तेल के बाद असले के हवाले से है, तो वो मुल्क जो कि बहुत ही मशनूई इकोनॉमी पर चल रहा हो, जो कि अंदर से खोखला हो माशी तौर पर और ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो, तो ये बहरान जो है ये वक्ती तौर पर तो इनका ये हल वल ढूंढ लेंगे, लेकिन ये हल नहीं है, क्योंकि जनवरी में फिर ये शटडाउन क्राइसिस हो सकता है, और इसे नजर आ रहा है कि ये फिर से शायद इसकी पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि 15 अगस्त तक का जो वक्त है वो मिला है ओबामा हुकूमत को
जी।
और इसमें अगेन जो मसला है वो इन दोनों पार्टियों के दरमियान स्पेंडिंग और डेफिसिट का मसला है, स्पेंडिंग बहुत ज्यादा जो है रिपब्लिकन उसके खिलाफ हैं, जबकि डेफिसिट अपनी जगह उसका बहुत बड़ा एक खलीज है जो कि मौजूद है, तो ये कैसे पूर करेंगे, और वर्ल्ड बैंक IMF ये सारे का सारा जो है पूरे जितने माशी अदारे हैं जो इनकी मदद करते हैं वो सब के सब भी मिलकर अगर चाहें तो इनका ये माशी मसला हल नहीं हो सकता, अनलेस कि ये दुनिया की जंगों से अपने आप को वापस लाएं और अपने अंदर के मामले को ठीक करें, बैरूनी मामलात से जब ये निकलेंगे और मुल्क के अंदर की तरफ तवज्जो देंगे तो तभी माशी मसला हल हो पाएगा
जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पर रहिएगा जी। शाही साहब
जी बेहतर
जनाब, ये जो 15-16 दिन की जंग थी इसमें बज़ाहिर ओबामा साहब ने रिपब्लिकन अराकीन को शिकस्त दे दी और रिपब्लिकन ने अपनी शिकस्त मान भी ली, लेकिन ये तो अबूरी बजट बिल पास हुआ है, 3 महीने के बाद फिर यही सूरत हाल पैदा होगी, तो क्या आप ये नहीं समझते हैं कि फिर रिपब्लिकन्स नई हिकमत अमली के साथ नई जंग शुरू करेंगे हुकूमत के खिलाफ?
देखें, यहाँ मैं दोनों इश्यूज को जरा सेपरेट कर दूं
जी।
जो फेडरल एम्प्लॉयज हैं उनके शटडाउन वाली जो बात है
जी,
वो एक ऐसी चीज है जिसको रिपब्लिकन्स छेड़छाड़ उसके साथ कर सकते हैं, वो ये अगली बार फिर वो इसको 15 दिन बढ़ा सकते हैं या 10 दिन के लिए या 7 दिन के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन जो डेट लिमिट है उसको छूने की हिम्मत रिपब्लिकन्स में भी नहीं है। उसका सबसे मेजर रीजन ये है कि अगर वो डेट लिमिट अमेरिका क्रॉस करता है तो पूरी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, वो इतने ज्यादा, वो अगर उनका बैटल भी है तो वो बैटल इतना ज्यादा नहीं हो सकता कि वो इसको यानी वो डेट लिमिट को क्रॉस हो जाने दें
जी।
वो आप देखें कल जो उन्होंने पास किया वो इस डर से पास किया है, वो शटडाउन अभी भी वो चलने देना चाहते थे, लेकिन बात अब शटडाउन की नहीं रह गई थी, बात अब हो गई थी डेट लिमिट क्रॉस करने की। तो इस दोनों चीजों को अगर मैं अलग रखूं तो अगर 3 महीने बाद की बात हम करें तो ऐसा हो सकता है कि शटडाउन की जो जो अभी 15 दिनों 16 दिनों का जो शटडाउन हुआ वो हो सकता है कि फिर से रिपीट हो जाए, या इससे पहले कमेटी आपस में कुछ बात करें, क्योंकि देखें इसका भी असर हो रहा है, 0.6% का लॉस जीडीपी का इस शटडाउन के कारण हुआ है, जो कि आप देखें 0.6% डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कोई बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री होती है वहां पे वो तो ग्रो ही करती है, 2% या 2.5% एनुअल वो ग्रो करती है, उसमें अगर आप 0.6% का लॉस कर दें तो फिर वो मैसिव लॉस माना जाता है। तो हो सकता है कि कमिटी आपस में बात करके वो डिसाइड करें कि जी नहीं इसे हमें हटाना है, इस चीज को हम दोबारा ना आने दें। डेट लिमिट की जहां तक बात है, रिपब्लिकन्स की ये हिम्मत नहीं है कि वो उसको डेट लिमिट को क्रॉस होने दें, क्योंकि पूरी इकोनॉमी चरमरा जाएगी और वोटर्स जो हैं वो उनको एक्यूज करेगा। जो इंटरेस्टिंग बात जो मुझे एक अलग पहलू इसमें दिख रहा है वो मैं चाहता कि आपके साथ शेयर करूं, वो ये पहलू है कि अगर आप देखें तो जॉन एफ कैनेडी के बाद
जी
और अभी ओबामा तक इतने सालों में जो डेमोक्रेट प्रेसिडेंट्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बिल क्लिंटन ही ऐसे थे जिनको ये हिम्मत थी कि वो हाउस, जिनमें कि उनकी मेजोरिटी नहीं थी, आपको पता है बिल क्लिंटन के जमाने में भी हाउस में उनकी मेजोरिटी नहीं थी, सीनेट में मेजोरिटी होती थी, तो लेकिन उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो हाउस से टक्कर ले सके और उनकी उनको जो अपनी बात मनवानी होती थी वो मनवाते थे। आपको याद होगा ओस्लो एकॉर्ड में उन्होंने ये काम किया था जब फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान एकॉर्ड साइन हुआ था। तो मुझे एक बात की जो एक मुझे कह थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म जो कह लें मुझे हो रही है, वो ये हो रही है कि अगर कल को ईरान से निगोशिएशन वाला मामला अगर कांग्रेस में आता है तो ओबामा
जी अली जाफर जैदी साहब जनाब मजमूई तौर पर ये जो 15 दिन तक जो अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान जो लड़ाई चली है, चपकलिश चली है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इसका नतीजा क्या रहा है?
नतीजा तो नुकसान की शक्ल में है, माशी नुकसान भी हुआ
जी
और बहुत नुकसान हुआ, दुनिया में सुबकी भी हुई और जो मुल्क है वो बिल्कुल एक ऐसी स्टेज पर आ गया, उसकी जो डेट रेटिंग है
जी
क्रेडिट रेटिंग वो बिल्कुल अपने गई जो बहुत खतरनाक हो सकती थी, जो वॉल स्ट्रीट है मतलब ये सारे का सारा चला गया।
अली जाफर जैदी साहब से मैं अपने साथियों से कहूंगा कि इनसे दोबारा रबिता बरकरार किया जाए टेलीफोन लाइन के जरिए। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, दिल्ली से हमारा रबिता बरकरार हो गया। शाही साहब जी जनाब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर मैं जो एक जी बिल्कुल बिल्कुल
जी बोले आप अपनी बात पूरी कर लें फिर मैं सवाल करूंगा।
तो जो ये एक एक जो विक्ट्री इन्हें हासिल हुई है
जी शाही साहब आवाज आ रही है आपकी?
हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप इस पूरे फाइट को देखें तो जो एक मुझे पॉजिटिव एलिमेंट इसमें नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि ओबामा ने एक एक तरह से रीढ़ की हड्डी अपनी दिखाई है और जो कांग्रेस से उन्होंने टक्कर लिया है ये टक्कर पिछले 50 सालों में सिर्फ और सिर्फ बिल क्लिंटन एक ऐसे डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे जिनके पास ये हिम्मत थी। तो कल को अगर ईरान के साथ जो निगोशिएशन चल रहे हैं अगर वो मसला आता है पार्लियामेंट के सामने यानी कांग्रेस के सामने वो मसला आता है तो मुझे ये उम्मीद है कि अगर पास्ट के मुकाबले ओबामा कुछ ज्यादा अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है यहाँ खर्च कर सकते हैं और थोड़ी ज्यादा ताकत दिखा सकते हैं जो कि शायद पहले टर्म में वो नहीं दिखा पाए क्योंकि कई पॉलिटिकल कंपल्सन होते हैं, दोबारा अपने इलेक्शन जीतना होता है, लेकिन शायद इससे एक मैं कहूं कि छोटी सी ऑप्टिमिज्म जो है वो उभर के आई है कि मेजॉरिटी ना होते हुए भी अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहे तो वो कांग्रेस को पे अपनी बात जो है वो मनवा सकता है। एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसे अब इस तरह से देखें कि अगर निगोशिएशन होता है और उन अमेरिका की तरफ से कुछ प्रोग्राम आता है कि जी हम ये सैंक्शन लिफ्ट करना चाहते हैं तो अगर ये रिपब्लिकन्स नहीं भी चाहेंगे तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट अपने प्रेशर में ये काम करवा सकें और शायद वो इसको लिफ्ट करवा सकें इस सैंक्शन को, तो एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट मानी जाएगी। तो मुझे थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म जो है वो इस फाइट से ये नजर आता है। और मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं चूंकि इनका सेकेंड टर्म है, अभी ने दोबारा इलेक्शन जीतना नहीं है, जो दोबारा लड़ नहीं सकते ये, तो इनके पास काफी गट्स, इनके पास काफी पॉलिटिकल कैपिटल बचा रहेगा जिसको ये खर्च कर सकें और शायद इसको अपने लेगेसी के रूप में ये देखें कि हम ईरान के साथ अपने संबंध जो है वो अच्छे कर सकें।
जी बहुत बहुत शुक्रिया शाही साहब। जी जैदी साहब, जनाब ये जो 15 दिन तक लड़ाई रही है रिपब्लिकन्स में और डेमोक्रेट्स में, कांग्रेस में और हुकूमत में, इसमें सारे तजिया निगारों का इत्तेफाक इस बात पर है कि रिपब्लिकन्स को शिकस्त हुई है और रिपब्लिकन्स ने भी अपनी शिकस्त तस्लीम की है। जॉन बोइनर साहब का बयान है, उन्होंने ये कहा है कि हमने लड़ाई खूब लड़ी, अलबत्ता ये लड़ाई हम जीत नहीं पाए। तो ये जो लड़ाई जीत नहीं पाए, क्या इसका उन्हें पहले से अंदाज़ा नहीं था? रिपब्लिकन्स के पास बहरहाल थिंक टैंक्स मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो हवा का रुख देखते हैं, जो हालात का तजिया करते हैं, जो इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई चाल चलने से पहले ये चाल उल्टी तो नहीं हो जाएगी।
जी यकीनन ये इन्होंने इसको इस पे गौर खोज किया होगा
जी,
लेकिन बाज़ औक़ात चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं और ये शिकस्त इन्हें जो हुई है ये इन्होंने इसको तस्लीम किया और ओबामा इमर्ज हुए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन के तौर पर। इन्होंने यकीनन ये प्रेशर बिल्ड किया और ओबामा, जैसे मैंने पहले किया, असल इनका इंटरनल मसला उनके हेल्थ केयर प्रोग्राम पर है। वो ओबामा को शिकस्त देना चाह रहे थे
जी,
हेल्थ के प्रोग्राम पर, क्योंकि उस पे सारी अचीवमेंट जो है डेमोक्रेट्स की वो ओबामा हेल्थ केयर पर है। और उसके बाद फॉरेन पॉलिसी के रेफरेंस से भी ये प्रेशर इनका था, जो कि जाहिर है इसमें ज़ायनिस्ट लॉबी भी है और पेंटागन में जो इसराइल का इंटरेस्ट है वो भी मौजूद है बैठा हुआ। तो उसने इस वक्त जो के नेगोशिएशंस ईरान के साथ चली हैं उसको में भी इनको इन्होंने अपने दांत दिखाने थे कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल यानी बैरूनी और खारजा जो पॉलिसीज हैं उस पे हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैवी वेट रखते हैं और हम परेशान कर सकते हैं। तो इसका मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल प्रेशर था और इस एतबार से उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल प्रेशर की स्ट्रेंथ है वो शो कर दी है, लेकिन अमलन उनकी हार हुई है और इसमें ओबामा इमर्ज हुए हैं एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट के तौर पर।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पर रहिएगा। शाही साहब, जनाब अमेरिका के अंदर से जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें जो लबो लहजा है रिपब्लिकन लीडरों का, उससे अंदाज़ा तो ये होता है कि वो शिकस्त का एतराफ़ तो कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं से उनके अंदर इस अज़्म का भी इजहार हो रहा है कि वो इस जंग को दोबारा छेड़ेंगे। अब अगर 3 महीने के बाद उनको फिर, यानी उनके लिए एक मौका है, वो जंग छेड़ना चाहें, तो अब कौन सा पत्ता उनके पास रह गया है?
देखें अभी तो पहले 3 महीने इनकी जो इंटरनल फाइट है, जो आपस में ये लड़ाई कर रहे हैं, उसी को टैकल करने में इनका 3 महीना जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें बाहर नहीं आ रही वो ये है कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा एक डिवाइड दो ग्रुप्स के बीच में आ गया है, जो थोड़े प्रैग्मेटिक रिपब्लिकन्स हैं। ऐसा नहीं है, देखें जनरली लोग ये समझते हैं कि रिपब्लिकन्स जो हैं वो सारे के सारे राइट विंग होते हैं और वो उसमें प्रैग्मेटिज्म नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उनमें भी कुछ लोग होते हैं जिनमें प्रैग्मेटिज्म होता है और वो चाहते हैं कि चीज़ों को एक सही तरीके से समझा जाए, पर एक जो ये टी पार्टी लॉबी है बहुत छोटा है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर इनके जो टोटल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो 19 या 20 हैं, और ये 19 और 20 दोनों सेनेट और हाउस को मिला के मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत पावरफुल इसलिए बन गए क्योंकि जो हाउस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हेड हैं, वो इस लॉबी से बिलोंग करते हैं। तो और आपको पता है कि इस तरह के जो की जो पार्लियामेंट होती है उसमें जो हाउस लीडर है वही किसी प्रपोजल को अपने थ्रू जाने देता है। तो कहीं ना कहीं कम नंबर्स के बावजूद भी इनकी इनकी जो पकड़ है वो पार्टी के ऊपर बहुत बड़ी और बहुत फैलती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक एक पुराना जो ओल्ड लॉबी पार्टी का है उसको ये लग रहा है कि ये हमारे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे वोट बैंक्स को खा रहा है। और जो और आप ये भी देखें कि अगर आप पिछले 40-50 सालों को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हर साल लिबरल थिंकिंग जो अमेरिकन हैं, यानी जो लिबरल पॉलिसीज, सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज पे वोट करते हैं, उनका नंबर्स बढ़ता जा रहा है। वो नंबर इसलिए बढ़ता है क्योंकि इमिग्रेंट्स जो दुनिया के दूसरे कंट्री से आके वहां पे सिटीजन बनते हैं वो जनरली लिबरल टेंडेंसीज के होते हैं। तो अगर एक तो आपका ओवरऑल इरोजन आपके वोटर बेस में हो रहा है और दूसरी तरफ आप अपनी एक पॉलिसी को और कंजर्वेटिव करते जा रहे हैं, तो वो इस एक सिंथेसिस नहीं डेवलप हो पा रहा है जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है उसमें और आपके प्रोग्राम के बीच में। तो मुझे ये लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी डिबेट अभी चालू होने वाली है कि क्या हम ये कर करके अपने वोटर्स को हटाते रहेंगे या हम एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी दें जिससे वोटर्स को ये लगे कि जी एक नई है, कुछ पॉलिसी लेके आए हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी के पॉलिसी से अलग है। जो पुरानी घिसी पिटी पॉलिसी है बुश के जमाने की और उससे पहले के जमाने की जो पॉलिसीज है वो तो वोटर्स देख चुके हैं, उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी सबसे बड़ी डिबेट तो पार्टी के अंदर होने वाली है, पहले उसको ये सेटल कर लें फिर आगे वो टैकल करेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी के किसी भी स्ट्रेटेजी को।
जी जी जैदी साहब, आप क्या कहते हैं कि रिपब्लिकन्स के अंदर आपको कुछ लड़ाई के आसार नजर आ रहे हैं?
जी, डिवीजन तो पार्टियों में होती है, लेकिन जब फैसला करने का वक्त आता है तो ऑब्वियसली पार्टी पॉलिसी को ही अक्सर सपोर्ट की जाती है।
जी,
और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में न्यू कॉन्स की और वो जो एक्सट्रीम राइट विंग की और वो पॉलिसी जिसमें एवेंजेलिक चर्च भी उनके पीछे था, वो शायद अब जमाना बदल रहा है और दुनिया थोड़ा सा इस तरफ जा रही है जहां पर अमेरिका के अवाम का प्रेशर बिल्ट हो चुका है कि उन्हें अब जंगें नहीं चाहिए।
जी,
और ये दुनिया का भी प्रेशर है, अमेरिका के अवाम का भी प्रेशर है, और अगर जंगे ना हो तो फिर वहां की माशी और सियासी हालत जो है वो अवाम के हक में मुड़ जाएगी। अब जो है अमेरिका की जो माशी और सियासी पॉलिसी है वो वहां के 90% अवाम के हक में नहीं जाती।
जी,
वहां की जो अकलियत है, जो क्लास है, रूलिंग क्लास, उसके हक में ये माशी पॉलिसी जाती है। और दोनों ये जो पार्टियां हैं इसमें ये जो रूलिंग क्लास है जो बेनिफिशियरी है जंगों की भी और माशी कैपिटलिस्ट निजाम की भी, उनकी लॉबी दोनों पार्टियों में मौजूद है और रिपब्लिकन में ज्यादा है। चुनाचे जो माशी वहां का बहरान है उसको हल करने के लिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, उनको अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करना होगा ताकि अपना बजट का डेफिसिट भी वो ठीक करें और जो स्पेंडिंग है बाहर की बजाय अंदर वो इसको स्पेंड करें अवाम की फलाह बहबूद पर। तो इस तरफ जाने के लिए मेरा ख्याल है डेमोक्रेट्स ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लाइन लेंगे और रिपब्लिकन्स शायद इस रास्ते को अपनाने में उनको मुश्किल पेश आए, क्योंकि उनकी जो दकियानूसियत है उसके पीछे दुनिया की और जो ताकतें हैं, जैसे सहूनियत है, जैसे सऊदी और मिडल ईस्ट के जो इंटरेस्ट हैं, वो सब इस चीज को खींचेंगे कि मॉडर्न पॉलिसीज और इंटरनल जो फोकस इकोनॉमी है उस पे अमेरिका ना आए। लेकिन डेमोक्रेटिक पॉलिसी, अवाम की पॉलिसी नजर आती है और होगी तो उसमें मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेट ज्यादा आगे जाएंगे सारी बात को लेके। बाकी पार्टियों के अंदर अपने इख्तलाफ राय चलती रहती है, लेकिन अगर जनरली उसमें देखें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तो उसमें मुझे लगता है कि राइट विंग का जो कंजर्वेटिव जो सोच थी उसका अब जमाना शायद उस तरह दरख्शां मुस्तकबिल नहीं है, तारीख भी नहीं है, लेकिन बहरहाल दरख्शां मुस्तकबिल डेमोक्रेट्स का ही लगता है।
جی بہت بہت شکریہ، لائن پہ رہیے گا شاہی صاحب. جناب، امریکی حکومت اور قانون ساز ادارے معاشی مسائل، اقتصادی بحران، قرضوں کی سطح اور ڈیفالٹ ہونے کے خطرے کے مستقل علاج کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟
دیکھیں، یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. یہ لانگ ٹرم سوچنا جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کی ایک اکنامک پالیسی جو ہوتی ہے وہ اتنی جلدی وہ بدلتی نہیں. وہ 5-7 سالوں کی بات نہیں ہوتی. اور یہاں تو ہم اکنامک پالیسی کی بات نہیں کر رہے، یہاں تو ہم اکنامک اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں.
جی،
امریکن اکانومی جو ہے وہ اسپینڈنگ پہ چلتی، وہ خرچ کرنے پہ چلتی ہے. وہاں آپ کو پیٹریٹ تب مانا جاتا ہے جب آپ خرچ کرتے ہیں. یعنی اگر مہینے کی آپ کی کمائی $4,000 ہے اور اگر آپ اس میں $3,800 خرچ کرتے ہیں تو آپ کو مانا جاتا ہے کہ آپ بہت بڑے پیٹریوٹ ہیں. تو یہ مینٹیلیٹی ہے، اسپینڈنگ کی مینٹیلیٹی، یعنی ہمارے پاس پیسہ، ہماری انکم کم ہو لیکن ہم ایکسپینڈ کریں، ہم ادھار لے کے کریں. یہ مائکرو لیول پہ بھی ہوتی ہے، یعنی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ انہوں نے لون لے لیتے ہیں وہ بینک سے، اتنی جتنی ان کی پراپرٹی نہیں ہوتی، اپنی پراپرٹی سے 10-10 گنا زیادہ لون جو ہے وہ بینک سے اٹھاتے ہیں
جی،
اور پھر وہ اسپینڈ کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ جی یہ تو ہم پورا کر ہی دیں گے. یہ مائکرو لیول پہ بھی ہوتا ہے، اور اسی کا ایک جو بڑا ایک سمجھنے کی مینیفیسٹیشن ہے وہ مائکرو لیول پہ امریکن اکانومی ہے جو کہ اسپینڈنگ میں بلیو کرتی ہے لیکن ان کے پاس ریسورسز اتنے نہیں ہوتے ہیں. تو اب چیزیں کیا بدل رہی ہیں، ان کو بیسک چینجز لانی پڑیں گی. وہ لانی پڑیں گی ان کے اکنامک اسٹرکچر میں. وہ اسٹرکچر میں چینج کیسے آئے گا؟ ٹیکنالوجی آپ کے پاس دنیا میں سب سے بہترین تھی، تو اگر آپ دنیا میں سب کو بیچتے تھے ٹیکنالوجی تو اس ٹیکنالوجی سے آپ کو اتنا پیسہ مل جاتا تھا جس سے کہ آپ بے انتہا جو ہے آپ خرچ کر سکتے تھے. دوسری چیز ہوتی تھی مینوفیکچرنگ. مینوفیکچرنگ آپ کے اندر اسٹرانگ تھی تو وہ ایک بہت بڑی رقم جو ہے آپ کو اس سے ملتی تھی. اب مینوفیکچرنگ کی جاب ساری اٹھ کے چلی گئی چائنا میں، اور وہ سارا ٹریڈ بھی چائنا کی طرف ٹلٹ ہو گیا. اور صرف چائنا ہی نہیں، تائیوان کہہ لیں، تھائی لینڈ کہہ لیں، انڈیا میں بھی تھوڑا بہت، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں کافی مینوفیکچرنگ کی جاب شفٹ ہو گئی اور اکانومی کہیں نہ کہیں وہاں شفٹ ہوا. تو رہ گیا آپ کے پاس ٹیکنالوجی. اس ٹیکنالوجی میں بھی یورپین کنٹریز جو ہیں وہ انہوں نے ڈینٹ مارا ہے بہت بری طرح سے، اور ایشیا میں آپ کو پتا ہے جاپان نے اور ساؤتھ کوریا نے بہت بڑا ڈینٹ مارا ہے. تو یہ دو جو آپ کے پاس سب سے بڑے کہہ سکتے ہیں آپ کی جو کمائی ہوتی تھی وہ ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کے تھرو اور انڈسٹریل ایکسپورٹ کے تھرو، ان دونوں میں میسیو ڈینٹ آ گیا ہے. تو یہ جو پرانا زمانہ تھا جس زمانے میں آپ بنا سوچے ہوئے خرچ کرتے تھے، وہ زمانہ اب رہا نہیں کیونکہ آپ کی وہ انکم نہیں رہی. تو جیسے مائکرو لیول پہ، جب آپ کو پتا ہے جب یہ سب پرائم کرائسس ہوا 4 سال پہلے اور لوگوں کو لگا کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، ہمیں تو اپنا گھر بیچنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں، ہم نے تو لون بہت لے لیا. تو اب وہاں پہ لوگوں کے دماغ میں آنے لگا کہ نہیں، اب ہمیں کچھ بچانا چاہیے اور اسے ہم کو ری تھنک کرنا چاہیے پالیسی کو. تو مائکرو لیول پہ تو آیا، میکرو لیول پہ یہ ملک کب یہ سوچے گا کہ ہمیں اپنی پالیسی بدلنی ہے؟ اس میں ابھی وقت لگے گا. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی پوری طرح سے یہ تیار ہیں. چھوٹا سا ایگزامپل میں آپ کو دے دوں کہ آج سے 2 سال پہلے انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا کہ اگلے 10 سالوں یعنی ایک دشک میں ہم $550 بلین جو ہے وہ ڈیفنس کے بجٹ سے کاٹیں گے. اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا ریپبلکنز نے کہ جی یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ، $55 بلین اینوئل آپ ڈیڈکٹ کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی رقم ہے، آپ کہیں اور سے کاٹیے. لیکن یہ جو مانسکتا ہے، جب تک یہ مینٹیلٹی نہیں بدلے گی کہ ڈیفنس سے ہمیں پیسے ہٹانا ہے اور یے جو فورن انٹرونینشن ہم کر رہے ہیں وہاں سے ہم پیسے نکالیں اور انٹرنلی ہم کہیں اس کو انویسٹ کریں، تب تک یہ چیزیں سالو ہونے والی نہیں ہے. اس کے لیے ایک میسو ٹیکٹونک شفٹ ہونی چاہیے مینٹیلٹی میں. وہ کب آتی ہے یہ پتا نہیں، پر ہاں اس کے کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ وہ آنے والی ہے، لیکن ابھی وقت لگے گا. اتنی جلدی جو ہے چیزیں یہاں بدلتی نہیں ہیں.
جی شکریہ جناب شاہی صاحب. اور ناظرین، اسلام آباد اسٹوڈیو سے رابطہ ہمارا برقرار ہو گیا ہے، ڈاکٹر قندیل عباس وہاں موجود ہیں. قندیل عباس صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی قندیل عباس صاحب، امریکہ کا جو معاشی بحران ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے، حکومتی شٹ ڈاؤن ختم ہو گیا ہے اور حکومت کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ عارضی طور پر ٹل گیا ہے، یہ جو مجموعی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
देखिए ये जिस तरह के शटडाउन हमने देखा अमेरिका में, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस तरह का अमेरिका को इस तरह के क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा और फ्यूचर में भी इससे ज़्यादा शदीद क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। मैं कुछ ही अरसा पहले जब ख़ुद मैंने अमेरिका के एक विज़िट किया और वहाँ पर आम पब्लिक के अंदर जब मैं गया तो मुझे ये महसूस हुआ कि अमेरिकन जो इकोनॉमी है उसके अंदर नॉन इशूज़ को इशूज़ बनाया जा रहा है। वहाँ पर हेल्थ केयर बिल के ऊपर इस तरह की डिबेट चल रही होती है या वहां पर गे मैरिजेस के ऊपर या जो वहां पर नॉन इश्यूज हैं उसको इतना हाईलाइट कर दिया गया है कि लोगों को उसी में उलझा दिया गया है, लेकिन जो लोगों के जेन्युइन इश्यूज हैं इकोनॉमी के उसको एड्रेस ही नहीं किया जाता। और उसको इसलिए एड्रेस नहीं किया जाता कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है उसको दूसरे बहुत से मुल्कों के साथ रिलेट कर दिया गया है और वहां पर जो उनका नियो कॉलोनियलिज्म है यानी एक नए स्टाइल में वो दुनिया के जो वसाइल हैं वो लूट कर चाह रहे हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी को सपोर्ट किया जाए। ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है उनके लिए क्योंकि वहाँ की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर एक सुपर पावर को चाहिए होती है। और ख़ास तौर पर जब इंटरनेशनल क्राइसिस में अमेरिका एक लीडिंग रोल प्ले करना चाह रहा है, इराक के बाद अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बाद सीरिया और सीरिया के साथ साथ इजिप्ट, इस तरह के क्राइसिस के अंदर जाकर जाहिर है कि जो इंटरनल और डोमेस्टिक इकोनॉमी है अमेरिका की उसको एक शदीद झटका लगा है। और उस झटके की वजह से मैं समझता हूँ कि जिस तरह का शटडाउन हुआ है, ठीक है ये एक टेक्निकल चीज़ थी, लेकिन इसकी वजह से वहाँ पर लाखों लोग मुतासर हुए हैं और उन लाखों लोगों के ऊपर जो मनफी असरात मुरतब हुए हैं मैं समझता हूँ कि उसका खमियाजा जाहिर है कि आम लोगों ने भुगता है और गवर्नमेंट के ऊपर तो उसका कोई असर नहीं हुआ। वो एक अरसा गुजरने के बाद उन्होंने बज़ाहिर कह दिया कि शटडाउन ख़त्म हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक इंटरनेशनल लेवल के क्राइसिस से अमेरिका रिट्रीट करके वापस अपनी इकोनॉमी को इंटरनली एड्रेस नहीं करता, इससे ज़्यादा शदीद क्राइसिस का फ्यूचर में उसको सामना करना पड़ सकता है।
जी कंदील अब्बास साहब, ये जो मौजूदा जो भी बहरान था इसको फिलहाल टालने की कोशिश की गई है, उबूरी बजट बिल पास किया गया है, 3 महीने का है, 3 महीने के बाद ये मसला फिर उठ सकता है। अभी मैंने एक सवाल किया था कि खुद अमरीकी हुकूमत, अमरीका के अरबाब हल्लोक्त, अमरीका के कानून साज इदारे, अमरीकी सेनेट, ऐवान नुमाइंदगान मुस्तकिल हल के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं?
देखिए मुस्तकिल हल के बारे में वो उस वक्त सोचेंगे जब उनके पास ऐसा कोई हल मौजूद होगा, इसलिए कि वहाँ की इकोनॉमी वो खुद टेम्प्रेरी बेसिस पर मेंटेन की जाती है और उस बेस पर वो चलाई जा रही है। क्योंकि अभी जब सीरियन क्राइसिस में उन्हें जाकर इन्वॉल्व होना था तो सऊदी अरब से उनको ऑफर मिल गई कि बजट हम पूरा करेंगे। इसी तरह इराक की इकोनॉमी में जब उन्होंने एंटर होना था तो वहाँ पर वहाँ के ऑयल के जो रिसोर्सेज थे उसको उन्होंने बेस बना लिया था। बाहर तो इस तरीके से वो इकोनॉमी को अपनी को मेंटेन करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज चूँकि उन्हें क्रिएट करना होती है और वहाँ पर लोगों में पैसा सेव करने का ट्रेंड बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि वहाँ पर लोगों को एक ऐसा तासुर दे दिया गया है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अगर आज का जो आपने पैसा कमाया वो खर्च हो जाता है तो कल की फिक्र मत करें, आपको कल पैसा मिलेगा। लेकिन वो इस चीज़ को भूल गए हैं कि जिस तरह के अभी क्राइसिस आए और शटडाउन हो जाता है तो वहाँ के लोग इस सूरत में क्या करेंगे। ज़ाहिर कि इस शटडाउन के बाद लोगों आम लोगों में भी ये ज़रूर एक इसके असरात मुरतब हुए हैं कि जिस तरह के उनसे वादे किए गए हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के, वो इकोनॉमी इस हालत में नहीं है कि परमानेंट कोई सोल्यूशन उनको दे सके। इसी वजह से एक टेम्परेरी सोल्यूशन फिलहाल दिया गया है क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन एक लंबे अरसे तक सोचने के बावजूद उनको मिला नहीं है। और अगर ये परमानेंट सोल्यूशन उनको मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि जो ग्लोबल लेवल पर अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं उसमें से बहुत कोई ट्रीमेंडस एक चेंज हमें नजर आए, तब तो कोई एक परमानेंट चेंज हमें नजर आएगी, अदरवाइज मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि कोई परमानेंट चेंज इसके सिलसिले में अमेरिका को मिल सके।
बहुत बहुत शुक्रिया शाही साहब। जनाब अमेरिका में कर्जों की सतह बढ़ा के हुकूमत का कारोबार कब तक चलेगा? मैं साफ सवाल करूं, अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी इकतसादी ताकत कहा जाता है और उसका सारा दारो मदार कर्जों पर है, तो कब तक यह कर्जे ले लेके अपनी सुपर पावर ही बाकी रख पाएगा? 2.5 मिनट का वक्त है हमारे पास।
देखें डिक्लाइन जो है वो शुरू हो चुकी है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, इसके कई सिग्नल्स जो हैं इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल सिग्नल्स जो हैं वो मिलने शुरू हो गए हैं। ये डिक्लाइन जब भी किसी भी अंपायर का डिक्लाइन होता है उस अंपायर को नहीं लगता कि उसका डिक्लाइन हो रहा है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश हुकूमत का डिक्लाइन हो रहा था तो उसे ये नहीं लग रहा था कि उसका डिक्लाइन हो रहा है, उसे ये लग रहा था कि वो अभी भी सुपर पावर है। तो ये डिक्लाइन जो है वो चालू हो चुकी है, ये डिक्लाइन धीरे धीरे आप एक इसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे दूसरी प्रॉब्लम आएगी, उसको सॉल्व करेंगे तीसरी प्रॉब्लम आएगी। तो ये डिक्लाइन जो है वो एक मोशन है, ये एक आप इसे कह दें नेचर का एक नियम है, ये शुरू हो चुका है, ये अभी खत्म नहीं होने वाला। ये तभी खत्म होगा जब एक नई सुपर पावर फिर इमर्ज होके या मल्टीपोलर वर्ल्ड एक इमर्ज होके आएगी और आपका दबदबा जो है दुनिया से खत्म होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये खत्म होने वाली है, आप इसको टाल सकते हैं, आप इसको रोक नहीं सकते। तो वही वो टाला जा रहा है, कितने दिनों तक ये चलेगी, डिक्लाइन 5 साल में होगा 10 सालों में होगा, ये देखने वाली बात है। पर डिक्लाइन जो है वो अब एक जिसको कह सकते हैं ये रियलिटी है और इससे भागा नहीं जा सकता।
जी बहुत बहुत शुक्रिया शाही साहब। कंदील साहब 1.5 मिनट का वक्त है, क्या कहेंगे आप इस बारे में?
बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि जिस स्टाइल में अमेरिका ने यूनिपोलर वर्ल्ड का एक ढंडोरा पीटा था, बाइपोलर वर्ल्ड के ख़त्म होते ही अमेरिका ने यह तासुर दिया था कि अब वो यूनिपोलर वर्ल्ड होगी और यूनिपोलर वर्ल्ड के टॉप पे अमेरिका बैठा होगा, कतन ऐसा हो नहीं सका और उसके जो तजर्बात थे वो नाकाम हुए। और इसके बाद जो दुनिया के मुख्तलिफ पोल्स थे यानी मल्टी पोल्स थे उन्होंने सर उठाया और उसके बाद अमेरिका को हर स्टेज पर चैलेंज किया और ख़ास तौर पर इकोनॉमिक लेवल पर चाइना की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से और बस छोटे छोटे जो ममालिक हैं उनकी तरफ से अमेरिका को चैलेंज किया गया। इससे साबित होता है कि एक तो ये कि अमेरिका का जो यूनिपोलर वर्ल्ड का प्लान था वो नाकाम हुआ और जो इंटरनेशनल सिस्टम था वो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बना पाया। और इस कोशिश के अंदर वो न सिर्फ ये कि इंटरनेशनल इकोनॉमी को मेंटेन नहीं कर सका बल्कि अपनी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको भी क्राइसिस का उन्होंने शिकार कर दिया। तो मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि एक डिक्लाइन वाली सूरत हाल है और इसको संभाला देना उनके लिए अभी बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया कंदील अब्बास साहब। इसी के साथ हम सौरभ कुमार शाही और डॉक्टर अली जाफर जैदी के भी शुक्रगुजार हैं। बहरहाल अमेरिका का जैसा कि हमारे तीनों तजिया निगारों ने बताया कि जवाल की अलामतें जाहिर हो गई हैं और ये अलामतें ये इंतबाह हैं उन मुल्कों के लिए, उन हुकूमतों के लिए जिन्होंने अपनी मईशत को अमेरिका की मईशत से वाबस्ता कर रखा है। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@saartv.ir। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।